हेलो गाइस,
व्हाट इज अप।
मेरा नाम है रोहित
और मैं हूं आयुष।
WWE हो या फिर ऑल इलीट रेसलिंग,
ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट,
रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला,
क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा।
वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड शायद थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कोडी रोड्स के अराउंड बहुत सारी बातें इस समय इंटरनेट पर चल रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उनके रन के बारे में बात चल रही है और रोमन रेंस अब जो वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ले चुके हैं, अब वो उसको आने वाले टाइम में कैसे कैरी करने वाले हैं, क्या कैरी करने में सक्सेसफुल होंगे और जो भी कुछ चल रहा है कोडी रोड्स के अराउंड, सब कुछ आज इस एपिसोड में है। और ये सुपरस्टार स्पॉटलाइट का कोडी रोड्स वाला एडिशन है, तो हम लॉन्ग टर्म में भी बात करने वाले हैं कि आज से आने वाले 3-4 साल या 5 साल बाद कोडी रोड्स को किस तरीके से कंपनी के अंदर देखा जा सकता है। तो भाई पॉडकास्ट आप सुन रहे हो तो फॉलो रेट सब कुछ कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना भाई, वो बहुत जरूरी है, ताकि जैसे नया एपिसोड आए आपको उसकी जो नोटिफिकेशन अलर्ट है वो मिल जाए। और आयुष, सबसे पहले ही इससे पहले कि कोडी रोड्स के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के ऊपर आए, फिर रोमन रेंस के साथ जो कंपैरिजन चल रहे हैं उसके ऊपर जब आए, उससे पहले अभी जो कोडी रोड्स के अराउंड चल रहा है, ये होता है बेबीफेस के साथ रीसेंट टाइम में WWE में, कि एक बार तो सारे लोग रूट करते हैं कोडी रोड्स के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा शिफ्ट आने लगता है। और अभी तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो जो शिफ्ट है वो पूरा आ चुका है, लेकिन इसको किस तरीके से देखा जा सकता है कि एटलीस्ट कुछ अमाउंट में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि कोडी इज बोरिंग भाई, रोमन को वापस ले गया हो।
भाई देखो, बहुत कुछ है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी कुछ हम डिटेल में भी जाएंगे। सुपरस्टार स्पॉटलाइट है इसीलिए, और बहुत सारे सुपरस्टार्स का हमने पहले भी करा, लेकिन रोहित इससे पहले कि मैं जवाब दूं और मैं हम बढ़ें इस टॉपिक में आगे, मैं चाहता हूं कि लोग नीचे कमेंट करें और क्वेश्चन काइंड ऑफ कुछ ऐसा है कि डू यू थिंक कोडी रोड्स इस रेन में आगे बहुत सक्सेसफुल होंगे, और अगर हाँ या ना तो आपका रीज़न क्या है। और मैं नहीं चाहता कि ऑनेस्टली हम बस इससे कंपेयर करें कि रोमन रेंस क्या था और कोडी अब क्या होगा। जेन्युइनली मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोडी रोड्स को ही जज करें और ये बताएं कि कोडी रोड्स क्या करने वाले हैं आगे, आपको क्या उसमें पोटेंशियल दिख रही है। इट्स टू अर्ली टू जज, लेकिन आपको क्या लगता है तो उस पर ज़रूर नीचे बताना। रोहित, मुझे लगता है अभी तक कोडी रोड्स का जो रन रहा है WWE में सो फार, ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है, और किसी सुपरस्टार को इतने टाइम से उतना पुश मिला नहीं था एज अ बेबी फेस, बिकॉज रोमन रेंस काफ़ी टाइम से चैंपियन थे और कोई ऐसा सुपरस्टार दिख भी नहीं रहा था जो उस चीज़ को चेंज कर सकता। आई थिंक ड्रू मैकइंटायर में भी सबसे क्लोज आए बेबी फेस रिएक्शन जिनको मिला बहुत बड़ा, जो रोमन को हरा भी सकते थे, जो बिलीवेबल भी लग रहे थे, मे बी सेथ रॉलिंस एक पॉइंट पे, लेकिन कोडी रोड्स वाज द चोजन वन। कोडी रोड्स वो बंदा था जो आया ही WWE में काम करने था, बिकॉज स्टोरी लाइन वाइज, पूरी लाइफ वाइज, और कोडी रोड्स की जो एक अचीवमेंट कभी नहीं हो पाई उसको पूरा करने के लिए WWE ने ये जो अपना एक चैलेंज है या फिर हम कह सकते हैं एक बेट ली है कोडी रोड्स के ऊपर एंड मेड हिम द WWE चैम्पियन। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अभी तक जो कोडी का WWE रन है वो तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि परफेक्ट रहा है, बिकॉज कितने ही मैचेस वो हारे हैं। गिमिक की अलग बात है, बिकॉज ऐसा नहीं लगता रोहित कि जितना भी अभी तक कोडी ने काम किया है उनका गिमिक हमें देखने को मिला ही नहीं है, और बेसिकली वो फिनिश द स्टोरी वाला ही एंगल था जो चल रहा है तब से।
जब सेथ रॉलिंस के सामने वो आए थे रेसलमेनिया में, उन्होंने मैच किया था, विंस मैकमैन खुद उनके घर गए थे, तो इससे ही पता चलता है कि कितना विंस मैकमैन जैसा बंदा भी किसी सुपरस्टार में इन्वेस्टेड है। और अगर विंस मैकमैन जैसा इन्वेस्टेड है तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विंस ही वो बंदा है जो रोमन रेंस में भी इन्वेस्टेड था, और आज अगर रोमन रेंस किसी लेवल पर है तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट विंस मैकमैन को जाता है। वरना अगर शुरू से अगर ये ट्रिपल एच का एरा चल रहा होता तो आयुष बहुत डाउट की बात है कि क्या रोमन रेंस का भी इस लेवल पर आते हैं फिर नहीं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा कितनी मेहनत कर ले, अगर उसको कभी स्पॉटलाइट में नहीं रखा जाता तो फिर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जैसा आयुष ने ये बोला कि क्या कोडी रोड्स का गिमिक या कोडी रोड्स का कैरेक्टर हमेशा ऐसा ही नहीं रहा है कि उनको स्टोरी फिनिश करनी है, आई थिंक अभी इस पॉइंट पे वही उनके लिए थोड़ी सी ट्रबल वाली सिचुएशन है। जैसे अगर हम रीसेंट अभी चैंपियन बन अभी तक का उनका जो रन है, आयुष ने बोला बिल्कुल परफेक्ट है, और उस बात से मैं कोई डिसएग्री नहीं करूंगा, वो एक ड्रीम रन है, परफेक्ट रन मैंने इसको ड्रीम रन बोला जाएगा जो किसी एक सुपरस्टार का होगा, स्पेशली जो पहले कंपनी से रिलीज हो चुका है, तो ये तो एक ऑलरेडी बहुत बड़ी सक्सेस रही है कोडी रोड्स के लिए। लेकिन चैंपियन बनने के बाद का अगर हम अभी कुछ 10 दिन के आसपास का टाइम देखें तो यहाँ पे कुछ वो जो कैरेक्टर है आयुष, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अब चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी कोडी रोड्स के प्रोमो में देख के ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी ही बातों से आगे नहीं निकले, और हम यहाँ पे कोई होते नहीं वैसे बड़े वाले जज करने के लिए, और ये 10 दिन है भी नहीं जज करने के लिए। लेकिन एक जो चीज़ मुझे लगता है कोडी रोड्स के एंड पर नहीं लेकिन WWE के एंड पर गलत हुई है, हो सकता है मैं इससे आयुष का बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन हो, कि मुझे लगता है उनको बहुत बड़ी फ्यूड में उनको डालना चाहिए था, एलेन नाइट और एजे स्टाइल्स, अभी उनके उनमें से किसी एक के साथ उनका बैकलैश में मैच होगा, लेकिन अगर सीधे एक बहुत बड़े प्रोग्राम में उनको एंटर करवाते चाहे जो भी जैसा मर्जी करके, इसका मतलब मैं किसी बहुत बड़े सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता, वरना ऐसा लग रहा है कि एकदम से समुद्र की लहर आई और उसके बाद जैसी लहर गई तो बस बीच एकदम से बिल्कुल ठंडा गीला सूखा हो गया।
भाई बहुत कुछ बोला है यहाँ पे रोहित ने, और रोहित मैं कहूँगा कि कोडी रोड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इस टाइम पे, क्योंकि ये पोलराइजिंग फिगर बन चुका है WWE में, और जो लोग समझ नहीं पा रहे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी एक पोर्शन है लोगों का जो कोडी को अनबिलीवेबल सपोर्ट करता है, लेकिन फिर कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो कोडी रोड्स को उतना लाइक नहीं कर रहा है, फिर उनको लगता है कि कोडी वो कभी कर नहीं सकता है, लेकिन ये जो पोर्शन कोडी को कह रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, फिर मे बी कोडी बोरिंग है या फिर कोडी रोड्स को कुछ चेंज करना चाहिए, एक्स वाई जेड रीजंस, कोडी को ऑलरेडी सब कुछ बदल देना चाहिए बिकॉज अब हमें वो 10 दिन बाद अच्छा नहीं लग रहा, वो मोर ऑफ अ रीज़न ये है कि बिकॉज वो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि रोमन रेंस के बाद कोडी उस चीज़ को कैरी कैसे करेगा, और वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डाउट है। मैं ये नहीं बोलूँगा आगे कि कोडी रोड्स तो भाई कमाल कर देगा, और एक ऐसी लेगेसी 1300 दिन की रेन को कैरी करना, 99% लोग उसके अंदर फेल हो जाएंगे, तो कोडी रोड्स के कंधे पे जो चैलेंज है, जो प्रेशर है, वो पहले ही अनबिलीवेबल टफ प्रेशर है, मे बी वो उस चीज़ में फेल होंगे, 1% चांस है वो नहीं होंगे, लेकिन आई थिंक रोहित जैसे विंस मैकमैन का हमने नाम लिया कि रोमन रेंस में वो इन्वेस्टेड थे, ड्रू मैकइंटायर भी विंस मैकमैन ने ही उनको चोजन वन नाम दिया, और भले ही पूरा सर्कल लगा ड्रू को वापस आके वो करने में, विंस मैकमैन ने ही चूज़ करा कोडी रोड्स को भी, और ये हर चीज़ में कॉमन क्या है कि सबको एक बेबी फेस बनाना चाहते थे, सबको एक इस तरीके का सुपरस्टार बनाना चाहते थे जो उनके हिसाब से बेस्ट बन जाए टॉप पे। अब हुआ तो विंस के हिसाब से नहीं, लेकिन ये बंदे एंड अप ज़रूर हुए टॉप पे, तो अभी बहुत कुछ है आई थिंक कोडी की इस पिक्चर में जो देखना बाकी है, और इसी से मैं इस क्वेश्चन पे आऊँगा, क्या ये फेयर है, क्या ये बात 10 दिन में बोलना कि अब कोडी बोरिंग है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा अपने प्रोमो से, कोडी ये कोडी वो, आई थिंक अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं हुआ है, प्रॉपरली लैंडस्केप भी सेट नहीं हुआ है कोडी रोड्स के लिए कि कौन उनके चैलेंजर्स होंगे, वाई आर वी ऑलरेडी ऑन द शिप, क्यों हम ऑलरेडी जंप कर रहे हैं इस बोरिंग वाले डायलॉग पे।
ये जो इस बात का आंसर है, ये मेरा आंसर तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि ये जो मैंने बात बोली उनके लिए बड़े चैलेंजर लेके आने चाहिए थे, जैसे हमको लास्ट ईयर की रेसलमेनिया याद है, कोडी रोड्स भले ही हारे थे लेकिन उसके बाद सीधा उनको ब्रॉक लेसनर वाले प्रोग्राम में डाल दिया था, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि भले ही कोडी रोड्स हार गए थे लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि कोई इस बारे में इतना बात नहीं कर रहा कि कोडी हार गया, लोग ज़्यादा फोकस हैं कि अब ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स क्या करेंगे, वो याद है वो वाला वो केओटिक मंडे नाइट रॉक एपिसोड जब लग रहा था कि ब्रॉक लेसनर आज रॉ में कम्पीट करेंगे, भाई अपने जो है बिल्कुल रिंग गियर में आए थे ब्रॉक लेसनर, तो वो देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार अगर वो चीज़ दे देते कोडी रोड्स को तो क्या फिर ये बातें होती, ये मुझे नहीं लगता फिर ऐसा लोग बोलते, क्योंकि उनके जो दोनों ही प्रोमोज रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर से हैं, सेम से, और उनके पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो शायद ये WWE के एंड पे एक मतलब इसमें भी उनकी भी गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन पूरे फैंस को सेटिस्फाई करने के लिए एक तरीका हो सकता था।
मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि भाई अगर कोडी रोड्स को WWE दिखाना चाहती कि वो फाइटिंग चैंपियन XYZ, अब हमको पता है भाई कि वो स्मैकडाउन पे जा रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं थी, ये बात से मैं अग्री करूंगा कि ओवर भी यूज नहीं करना चाहिए। रोमन रेंस के बारे में जो सबसे बड़ी बात बोलते थे रोहित, इस चीज से हम डिसएग्री नहीं कर सकते कि जितने भी लोग रोमन की इंक्लूडिंग हम सब जो तारीफ कर रहे हैं उस रेन की, हम भी ये बात बोलते थे एक पॉइंट पे कि रोमन रेंस तो डिफेंड ही नहीं करता, रोमन रेंस तो आता ही नहीं है, रोमन रेंस को तो टाइटल की कोई वैल्यू नहीं, गिरा दी है सारी, और ये वो तब था जब वो रेन में थे, लेकिन रेन के बाद हम उसको काइंड ऑफ नेगलेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि भले ही रोमन रेंस ने जो मर्ज़ी किया, वो चीज़ उस चैम्पियनशिप की वैल्यू को मेनटेन ज़रूर करके रख रहा था, बिकॉज हर बार जब वो आ रहे थे कुछ फ्रेश देखने को मिलता था, लोग इंतज़ार करते थे, तो रोमन की एब्सेंस में जबकि कंप्लेंट होती थी, लेकिन उनकी प्रेजेंस में लोग खुश होते थे कि अब वापस आ गया तो अब क्या देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता कि ज़बरदस्ती थोड़ा ओवर यूज़ करा जा रहा है उस चीज़ का कोडी रोड्स का कि भाई कोई काम नहीं है, तब भी रॉ में एक प्रोमो दे दिया।
देखो रोमन रेंस को सबने क्रिटिसाइज़ किया था, बट यस बहुत सारे लोग ऐसे भी थे बोलने वाले जो ये कहते थे कि रेयर अपीयरेंस से जब वो आते हैं तो शो इंपॉर्टेंट फील होता है, उसमें से आयुष भी है मैं भी हूँ, लेकिन उनकी फिर भी इतना अभी भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि कई बार रोमन रेंस बहुत लंबे टाइम के ब्रेक पर जाते थे जो सही नहीं था, बट अगर मैं उसको कंपेयर करूँ ज़्यादा बार शो पर आने से, तो ये बात तो है भाई कि जितना ज़्यादा शो पर वो बंदा आ रहा है वो मतलब वीक में एक बार आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही शोज़ पर WWE ने उनको बुक किया, रॉ पे भी किया, स्मैकडाउन पे भी किया, जो कि शायद नीड भी है एक तरीके से, क्योंकि रेसलमेनिया में वो जीती हैं, तो चलो एक बार के लिए तो चलता है, लेकिन अभी कोडी रोड्स को एक एक डेडिकेटेड स्टोरी लाइन मिलेगी तो आई थिंक फिर उनका जो फोकस है वो जाएगा। और इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक ट्रू रेसलिंग हार्डकोर फैन, जो भी आपको बोलना हो, अगर आप किसी सिर्फ एक बंदे का फैन हो के रेसलिंग को या WWE को नहीं देख रहे, तो फिर कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा गलत है, स्पेशली सिर्फ 10 दिन जब किसी बंदे को चैंपियन बने हुए हैं। मैंने भी बातें बोली हैं कोडी रोड्स के बारे में,
और मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा क्योंकि हम अभी आगे ऐसे पॉइंट्स आएंगे इस पॉडकास्ट में जहाँ पे हम फ्यूचर की बात करेंगे किस डायरेक्शन में चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन जबकि ये चीज़ हमने अपने नोट्स में डाली नहीं, मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत फेयर कंपैरिजन अभी तो किसी भी एंगल से नहीं है, लेकिन करा ज़रूर जाता है और आगे भी आई नो कि करा ज़रूर जाएगा। जॉन सीना को यहाँ पे कंपेयर करते हैं नेक्स्ट, कि भाई जो जॉन सीना जिस लेवल पे बेबी फेस था, वो बंदा था जो कभी हील नहीं बनता, हैप्पी लकी गाय सबके लिए, वो भाई हमेशा खुश रहेगा। लेकिन रोहित एक बात ज़रूर थी जॉन सीना की, कि भले ही वो फेस रहे, लेकिन जब उनके सामने कोई ऐसा अपोनेंट आता था जो कि बहुत दिक्कत दे रहा है या फिर कोई ऐसा है, तो जॉन सीना भी भाई 2 सेकंड नहीं लगाते थे उसकी इज्जत उतारने में, माइक पे उसको बर्बाद करने में। फेयर ज़रूर थे वो, कॉम्पिटिशन में चीट नहीं करते थे, वो जॉन सीना की अपना कैरेक्टर गेमिक था, लेकिन वो चीज़ आई थिंक अभी कोडी की कहीं ना कहीं मिसिंग है। वो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं आई थिंक। और रोमन रेंज की डॉक्यूमेंट्री में एक बात ये मेंशन करी गई थी कि रोमन रेंज का भी बेबी फेस कैरेक्टर इसलिए नहीं चल रहा था बिकॉज वो टू गुड था वो बंदा उस कैरेक्टर में। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसको थोड़ा सा वो नेगेटिव हिंट दे, भले ही वो फुली एक हील ना बने।
यही वाली प्रॉब्लम मैंने अभी आई थिंक अपने किसी वीडियो में भी बोली थी कि कोडी रोड्स जरूरत से ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि भाई बंदा कुछ ज़्यादा ही जो है खुश है, वो जो है बड़ा इन्जॉय कर रहा है चीज़ों को, और एक WWE सुपरस्टार के अंदर अग्रेशन होने वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही वो कोडी रोड्स के अंदर। तो इस हिसाब से भाई ये इवन मैंने एक ट्वीट भी किया था, वो तो खैर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी, अभी उस पर मैं आयुष का टेक भी लूँगा अभी आगे एपिसोड में, जैसे उनको अपने कैरेक्टर में चेंज करने की ज़रूरत है, वो कोई गोल चेजर या फिर कोई स्टोरी फिनिश करने वाले नहीं रह गए हैं, अब उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है। बट इतना मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आप अभी कोडी रोड्स और रोमन रेंज का कंपैरिजन करके कोडी रोड्स को नीचे रख रहे हो, तो फिर 2017 के ज़माने या 2016 के ज़माने में भी हमको जाना चाहिए, जब रोमन रेंज को भी नेक्स्ट जॉन सीना कहा जाता था और उस टाइम पर भी एक बहुत बड़े प्रेशर के नीचे दबे रहते थे रोमन रेंज। तो वही सिचुएशन यहाँ पे घूम के आ रही है, लेकिन सवाल यही है लॉन्ग रन की जब बात होती है, 2016-17 वाले रोमन रेंज और 2024 वाले रोमन रेंज में बहुत अंतर है। और अगर यही फॉर्मेट यही टाइमलाइन में अगर मैं कोडी रोड्स को डालूं, तो आयुष लॉन्ग रन में किस तरीके से उनको देखा जा सकता है, मतलब सक्सेसफुल होने की बात हो रही है यहाँ पे, और WWE की नज़र में इतना तो तय है कि उन्होंने माना है कोडी रोड्स को कि वो नेक्स्ट उनके फेस है, इसीलिए उनको इतना रेसलमेनिया में मूवमेंट मिला था। तो क्या लग रहा है अभी इतना देख के, क्या करेंगे वो आगे?
अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जॉन सीना इज द गोट, और अगर कोई आगे बोलता है कि भाई जॉन सीना इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई डोंट थिंक कि सामने से हम बोलेंगे नहीं भाई रोमन रेंस, बिकॉज वो एक सब्जेक्टिव आइडिया है। इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है भाई जो आपके मर्जी है, इसमें कोई आगे अगर आपको बोल रहा है कि नहीं भाई ये नहीं ये है, तो वो सिर्फ एक डिबेट के लिए है। लेकिन अगर इस पॉइंट से जहाँ पे जॉन सीना से रोमन रेंस को कंपेयर किया जाता था, हम इस पॉइंट तक आ गए हैं कि अब जॉन सीना खुद रोमन रेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं ट्राइबल चीफ गिमिक के बाद, तो वो चीज़ कितनी बदल सकती है एक टाइम पीरियड में, वो हमने एक लाइव एग्जाम्पल देखनी है जहाँ पे हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा खुद उस चीज़ को लिव किया रोमन रेंस के थ्रू, वो चीज़ पॉसिबल है। तो अगर हम लॉन्ग रेस के घोड़े की बात कर रहे हैं कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है, आई थिंक जो पोटेंशियल है, जो ड्राइव है कोडी रोड्स की, वो बाकी और कई सारे सुपरस्टार्स बहुत कम ही एक दो ऐसे हो सकते हैं जो उसको मैच करें। आई थिंक कोडी रोड्स का जो प्यार है बिजनेस के लिए रोहित, सिर्फ WWE में नहीं, जो उन्होंने उसके अलावा उसके बाहर पिछले 3-4 सालों में करके दिखाया WWE से पहले, जिसके बारे में अभी भी बहुत कम बात की जाती है, आई डोंट थिंक कि कोडी को उतना इनफ क्रेडिट मिलता है कि कितने क्लोज हैं वो उस बिजनेस में। और यहाँ पे मैं ये भी पॉइंट बोलूँगा कि डस्टी रोड्स, आई डोंट नो कितने लोग उनको जानते हैं, मैं भी ये नहीं बोलूँगा आगे मुझे सब पता रहो डस्टी के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर हम बोलेंगे कि WWE में आज की डेट में भी इतने सुपरस्टार हैं डस्टी की तारीफ करते हैं, इतने सारे मेंशन्स डस्टी के कि उनका इस बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट था। तो अगर वो उस चीज़ को कर सकते हैं, तो कोडी रोड्स भी उन्हीं फुटस्टेप्स में आगे जा रहे हैं। तो जब लंबे रेस के घोड़े की बात हो रही है और किसी एक पे बैट की जा सकती है, बिकॉज रोमन रेंज शायद उतने टाइम अब WWE में ना रह पाएँ, आई डोंट थिंक कि कोई बेटर ऑप्शन है कोडी के अलावा।
कोडी रोड्स के अपने जो उनका थीम म्यूजिक है उसमें ये रेसलिंग हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली, और यहाँ पे वो अपनी इसी जो रोड्स की पूरी डस्टी रोड्स ने जो WWE के लिए काम किया है बैक स्टेज इवन उन्होंने जितने काम किए हैं। तो कोडी रोड्स के बारे में जैसा आयुष ने बोला कि वो सिर्फ WWE से उनका प्यार नहीं, प्रोफेशनल रेसलिंग अगर आप उनको उनका इंडी सीन देखोगे WWE से जाने के बाद तो उनके अंदर वो पैशन है और वो हमेशा ड्राइव करता है बड़ी चीज़ों के लिए। तो इसको इस तरीके से भी समझने की ज़रूरत है। कंपैरिजन के लिए अगर मैं ब्रॉक लेसनर की बात करूं तो ब्रॉक लेसनर कभी भी वो बंदा नहीं है जो कि बोलेगा कि यार मैं WWE के लिए ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो कि फैंस को उस नजर ब्रॉक लेसनर का देखने का कभी किसी को नजरिया नहीं कि भाई ये बंदा पैसों के लिए काम करता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का खुद का वो नजरिया है। लेकिन क्या हम स्टिल एंटरटेन होते हैं? बिल्कुल एंटरटेन होते हैं। लेकिन कोडी रोड्स के केस में वो इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई अगर उनको ज्यादा पैसे नहीं भी मिल रहे फिर भी वो काम करेंगे जिस जो करने में उनको मज़ा आता है। तो ये मुझे बहुत बड़ा रीज़न लगता है कि क्यों कोडी रोड्स के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं सक्सेसफुल होने का मतलब ये नहीं कह रहा कि वो आगे जाके और टाइटल जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ कि वो WWE कंपनी के बिजनेस को चला सकते हैं। और ये बात हमें क्यों करनी पड़ रही है? हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि WWE जिस बंदे को इस नज़रिए से देखेगी कि भैया ये हमारी कंपनी को आगे ग्रो कर सकता है वो उसी के ऊपर बैठ लेंगे और इवेंचुअली फिर फैंस उसको पसंद करेंगे, क्योंकि फैंस के पसंद करने पर ही WWE आगे चलती है। WWE के जो बिजनेस ड्रिवन डिसीजन है अगर वो फैंस पसंद ना करें ग्लोबली तो वो चीज़ कभी भी वर्क नहीं करेगी। तो मैं तो कोडी रोड्स को इस तरीके से देखता हूँ कि अभी उनको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है और ये जो कंपैरिजन्स हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन एक 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 छोटा सा सवाल रहेगा मेरा जो मैंने अपने ट्विटर पर लिखा था, आयुष इस पर क्या बोलता है, मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि क्या कोडी रोड्स को थोड़ा वेट थोड़े पाउंड्स गेन करने की ज़रूरत है टू लुक लाइक अ चैम्पियन? ऐसा नहीं कि वो अभी चैम्पियन की तरह नहीं दिखते, लेकिन इसको इस तरीके से फ्रेज करना बेटर रहेगा, वरना ऐसा भी लग सकता है किसी को कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, कितने छोटे सुपरस्टार भी रहे, डैनियल ब्रायन रहे हैं, रे मिस्टीरियो रहे हैं, उनको तो पॉपुलैरिटी अच्छी मिली है। लेकिन जब बात होती है बिल्कुल बड़ा लेवल मैच करने की, तो क्या अभी एक फैक्ट नहीं है कि ग्लोबली कैजुअल ऑडियंस सबको अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा चैंपियन चाहिए होता है जो थोड़ा दिखे चौड़ा हट्टा कट्टा और लगे कि भाई हाँ ये बंदा WWE को रिप्रेजेंट करता है?
एक बार फिर से मैं यही बोलूँगा कि ये इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, इसको बहुत अलग तरीके से लोग देख सकते हैं और रोहित ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल कोफी किंगस्टन भी उसके अंदर ऐड किया जा सकता है अलॉन्ग विद डैनियल ब्रायन एंड रे मिस्टीरियो। लेकिन जबकि ये सारे लोग चैंपियंस थे एक पॉइंट पे, जब बात आती है आइकॉन्स की, आई थिंक बहुत लोग बोलेंगे कि ब्रायन डैनियलसन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर एवर, मतलब शॉन माइकल्स के बाद सिर्फ उनको उनकी बात आज की एरा में की जा सकती रुक यहाँ काटना पड़ेगा रुक जब डैनियल ब्रायन की बात होती है तो बोला जाता है इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स, मतलब शॉन माइकल्स के बाद उनकी बारी आती है, उनको मेंशन किया जाता है। लेकिन जब हम चैंपियंस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि कौन रिमेंबर करा जाता है, तो अगर मैं लिस्ट देखूं, मैं बॉब बैकलैंड और ब्रूनो सैमार्टिनो को नहीं गिनता, लेकिन अगर उसके नीचे आएँ और देखें कि कौन कौन चैंपियंस थे, मे बी अगर फिजिक की अगर हम प्योरली बात कर रहे हैं तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक ऐसा नाम था जो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जैक नहीं था, लेकिन ट्रिपल एच, उसके बाद द रॉक, जॉन सीना, हल्क होगन, रोमन रेंस, ये सब लोग हैं। लेकिन रोहित अगर दूसरी तरफ लिस्ट बनाया जाए तो डैनियल ब्रायन, रे मिस्टीरियो, CM पंक, एज, शॉन माइकल्स, तो ये एक ऐसी, मतलब आई डोंट थिंक कि एक पॉइंट पे आजकल की डेट में मे बी ये ज़्यादा मैटर करता है कि लुक, बट मोर देन एनीथिंग एल्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई अभी क्योंकि जस्ट रोमन रेंज इतने टाइम बाद हारे हैं तो ये जितने भी चीज़ें बोली जा रही हैं जितने भी हो रहे हैं ये ना चाहते हुए भी सिर्फ इसलिए हो रहे हैं बिकॉज रोमन को इतनी देखने की आदत है कि वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग अब अपने चैंपियन से। बट मे बी अब से एक साल बाद रोहित लोग इस चीज़ को इतना नहीं देखेंगे कि कोडी कैसा दिख रहा है, पर इस चीज़ को मैं ज़रूर बोलूँगा कि कोडी की मे भी कुछ अलग उनका डिसीजन था बॉडी कैसी उनको चाहिए रेसलमेनिया के लिए, बट अगर वो चाहें जैसा कि हमने ड्राइव की बात करी, एज स्टाइल्स अभी वापस आए, उनको हमने देखा कितने जैक्ड हैं, आई डोंट थिंक कि अगर कोडी वो करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे।
ये इस हिसाब से देखा जा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये मतलब कोडी रोड्स को भी अगर देखें तो कोडी रोड्स भाई ऑलमोस्ट रोमन रेंज के जितनी हाइट है, साइज़ ऑब्वियसली उतना नहीं है, तो इसीलिए वो जो कंपैरिजन्स है वो चल रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि जैसा आयुष ने दोनों ही साइड हमको दिखा दी, होगन, स्टोन कोल्ड, द रॉक, ये जो बड़े बड़े साइज़ के फिर जैक्ड एकदम फिजिक वाले सुपरस्टार हैं, दूसरी तरफ ये शॉन माइकल्स की भी बात करी, डैनियल ब्रायन की भी बात करी, तो WWE में देखो फ्लेवर कोई सा भी चल सकता है। रोमन रेंज अपनी उस बिल्ड के साथ आए थे इसलिए उनको कुछ चीज़ें करने में आसानी हुई और विंस मैंने स्पेशली वो चीज़ देखते हैं, बट अभी टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं और कोडी रोड भी बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, जैसे नीड होगी मेरे ख्याल से वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि उनको
मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि लोग कभी ये क्वेश्चन रेज करते या फिर नहीं करते, लेकिन ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है एंड इट्स द सेम क्वेश्चन कि अगर यही कोडी रोड्स की जगह सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हराते हैं तो क्या 10 दिन बाद हम ये बोल रहे होते हैं कि सेथ रॉलिंस की फिजिक अच्छी क्यों नहीं है? क्या हम बोल रहे होते सेथ रॉलिंस इज बोरिंग? क्या हम बोल रहे होते सेथ रॉलिंस क्यों आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन पे जब वो स्मैकडाउन के चैंपियन है? या फिर हम सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट्स कोडी रोड्स?
मुझे इसके ऊपर ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस मेरे को लगता है सेथ रॉलिंस का केस और बुरा होता और अच्छा भी होता दोनों तरीके से। पहला तो जब सेथ रॉलिंस को मैच ही मिल रहा था तो लोग तभी उनके ऊपर टर्न कर जाते हैं, और कोडी रोड्स को इसलिए फायदा हुआ क्योंकि उनकी इमेज बिल्कुल नहीं है WWE में, बावजूद इसके कि वो पहले भी स्टारडस्ट या फिर कोडी रोड्स वाला कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, लेकिन अब वो नए वर्जन के साथ आए। तो मैं इसको मिक्स तरीके से बोलूँगा, ऐसा नहीं कि कोडी रोड्स है वो इसलिए हो रहा है, क्योंकि अगर वो होता नाम सेथ रॉलिंस जैसा तो भाई उसकी पहली बैंड बच चुकी होती, क्योंकि लोग फिर सेथ रॉलिंस को अलग नज़रिए से देख रहे होते। तो कोडी रोड्स के पास यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स सा बोलना चाहूँगा मैं, उनको फ़ायदा भी मिला है नुकसान भी मिला है, बट अभी मैं पहली फ्यूड उनकी देखना चाहूँगा। मैं तो डेफिनेटली उस नाव में बिल्कुल भी नहीं तैर रहा, उस जहाज में बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कोडी रोड्स के अगेंस्ट है, लेकिन जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती का, क्योंकि रोमन रेंस से चैंपियनशिप ली कोडी रोड्स ने, इस वजह से उनको नफरत करना ठीक है, क्योंकि जो बिल्कुल रोमन रेंस के फैंस ही हैं आई थिंक वहाँ से चीज़ ज़्यादा शुरू हो रही है।
आई थिंक अगर इसको मैं थोड़ा फ्लैट करके फ्लैटन आउट करना हो कॉन्वर्सेशन को कि भाई ये हमारा काइंड ऑफ अग्रीमेंट है दोनों का, तो मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूँगा कि अभी क्योंकि जस्ट रेसलमेनिया हुई है और अभी भी लोग उस डोज में है कि रोमन रेंस हार गया, और जब भी रोमन कुछ पोस्ट करेंगे या फिर कुछ तो लोगों को याद आएगा कि वो चैंपियन था ये वो, तो वो डायरेक्ट कंपैरिजंस अभी के लिए फेयर हैं बिकॉज लोग देख रहे हैं कि अब अगला चैंपियन क्या कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली उस चीज़ का एक रिएक्शन है। अभी 3-4 महीने हमको कोडी को देने पड़ेंगे और उसके बाद, ये बात मैंने भी रिसेंटली अपनी वीडियो में बोली कि क्या भरोसा भाई मैं खुद बोलूँ आके यहाँ पे समर स्लैम में कि कोडी इज़ अ बोरिंग WWE चैंपियन। तो आई थिंक कि उसको टाइम देना पड़ेगा और फिर जज करेंगे तो हमारी आर्ग्यूमेंट्स वैलिड भी लगेंगे। और रोहित इसी के साथ मैं आना चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि ये बहुत लोग पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली ये 1300 दिन तक तो नहीं चलने वाला, लेकिन कितनी देर तक रियलिस्टिकली कोडी रोड्स चैंपियन रहेंगे, इसी के बारे में जस्ट हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की है।
मेरे ख्याल से तो एक ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीने 9 महीने या 1 साल या 1.5 साल 2 साल, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि कोडी को इतने टाइम तक चैंपियन रहना चाहिए। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि कौन वो बंदा है जो कोडी रोड्स को हरा रहा है, तो अगर वो पॉइंट जल्दी आ जाता तो फिर भाई मेरे को 9 महीने भी वो चीज़ देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 1 साल के बाद आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा WWE रिसेंट टाइम में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद हाँ भाई नेक्स्ट रेसलमेनिया, अगर बिल्कुल सेफ बेट लेनी है तो शायद नेक्स्ट रेसलमेनिया तक तो कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप रहेगी, क्योंकि कोडी रोड्स वो बंदा है इसने 1300 दिनों का रेन तोड़ा है, तो अगर उसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने में हरवा दिया तो मुझे तो भाई इसका कोई लॉजिक दिखेगा नहीं यहाँ से।
और बिल्कुल आई थिंक मैं एग्री करूँगा, आई डोंट थिंक हमें ज़्यादा बोलने की यहाँ ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप लोगों ने नहीं सुना गया रेसलमेनिया 41, भाई गलत नहीं बोल रहा हूँ, 41 की प्रेडिक्शंस पर पॉडकास्ट आ चुका है, वो सुना नहीं है इससे पहले वाला ज़रूर सुनो। लेकिन रोहित हम जानते हैं कि अमेरिकन नाइटमेयर एज अ गिमिक का नाम ज़रूर है, पर ये कोई हील नहीं है, बेबी फेस है। और AEW में भी मोस्ट ऑफ द जो उनका रन था उसमें मैंने ज़्यादा कोई कोडी को इस गिमिक के अलावा कुछ प्ले करते हुए ऐसा देखा नहीं जहाँ पे वो बिल्कुल कुछ अलग ही कर रहे हैं। लेकिन अगर WWE चैंपियनशिप उनके पास एक पॉइंट के बाद चली जाती है तो और क्या चीज़ें हैं कोडी के कैरेक्टर से, मे बी एक हील टर्न उस तरीके का कुछ जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज एक चीज़ अगर रोमन रेंस की हम तारीफ करेंगे, अपने हील कैरेक्टर के अंदर रह के भी 4 साल में एज अ ट्राइबल चीफ उन्होंने हर चीज़ को इवॉल्व किया है, कभी सैमी जेन आ गया, कभी उसोस का कुछ चल रहा है, कभी सोलो सिकोवा की एंट्री हो गई, XYZ उन्होंने कुछ भी किया लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहा। तो कोडी उस चीज़ का यूज़ कैसे कर पाएंगे अपने आने वाले टाइम में?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ही कोडी रोड्स के लिए इस समय ये है कि अब तक वो काफ़ी कंफर्टेबल जोन में थे अपने कि बस मेरी स्टोरी है मुझे उसको फिनिश करना है, मेरी स्टोरी है मुझे उसे फिनिश करना है। लेकिन अब क्योंकि उनकी स्टोरी फिनिश हो चुकी है, भले ही वो कह रहे हैं नई स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, वो न्यू स्टोरी यही है कि एज चैंपियन वो पहले अपने आप को कैसे उतना रेलिवेंट रख पाते हैं। यहाँ पे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन यहाँ कोडी रोड्स को बीइंग अंडरडॉग ज़्यादा फायदा हुआ अभी तक अपनी उस चीज़ में, लेकिन अब जब वो चैंपियन है तो वो कैसे करेंगे, और स्पेशली उसके बाद जैसा आयुष ने बोला, मुझे लगता है बहुत कुछ डिफरेंट, बहुत कुछ चेंजेस, मैं तो बोलूँगा ड्रास्टिक चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक जो फैंस कोडी रोड्स को जान रहे हैं उनके इस नए रेन के अंदर कि भाई ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत सबकी मदद करता है, ये बंदा बैकस्टेज बहुत अच्छा है, ये बंदा रियल लाइफ में बहुत अच्छा है, बहुत गुड ह्यूमन बीइंग है, ये बंदा हमेशा सही के रास्ते पर चलता है, तो डेफिनेटली मैं एक उनका हील रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो वाला नहीं कि बस सिर्फ बाल काले करके आ जाएं, वैसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ बहुत डिफरेंट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि रोमन रेंज जैसा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हमेशा हमेशा प्लेट पर परोस के लाना, जैसा आयुष ने बोला कभी सैमी ज़ेन के भी स्टोरी लाइन, कभी भाइयों के साथ होना, कभी भाइयों के अगेंस्ट होना, उतना कुछ जब अलग अलग मटेरियल रहा रोमन रेंज के साथ तब जाके वो इतने टाइम तक चला था। और इवन रोमन रेंज को बिना चैंपियनशिप के भी कोई ये नहीं कह रहा कि भाई अब इस बंदे को देखने में क्या रखा, इवन अब और उल्टा एक्साइटमेंट है, तो भाई कैरेक्टर ऐसा बनाओ कि तुम्हारे हारने के बाद लोग एक्साइटेड हो कि अब ये बंदा क्या करने वाला है। तो कोडी रोड्स के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, मे बी अच्छे से उनको बैठ के खुद अपने कैरेक्टर पर कुछ बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं कह रहा मैं कि छोटे मोटे चेंज से काम चल जाएगा, क्योंकि चैंपियनशिप हारने के बाद या अब चैंपियन रह के उनको बहुत कुछ पहले से डिफरेंट करने की जरूरत है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे दिमाग में कोडी रोड्स के लिए ऐसा कोई एक आइडिया तो नहीं है, एंड आई थिंक जब ये साथ में बैठेंगे तो कुछ अच्छा ही बना लेंगे भाई।
और ये वाली जो हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट रहेगा इस पॉडकास्ट का, वो यही होगा कि आज से 5 साल बाद हम कोडी रोड्स को कैसे देख सकते हैं, बिकॉज हमने अब पूरे एपिसोड में रोमन रेंस की बात की है, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस वे में भी है, बिकॉज कोडी रोड्स एक उस पाथ पे हैं जो रोमन रेंस ने में भी बहुत पहले WWE में स्टार्ट करा, कोडी भी उसी पाथ पे थे, पर उनका वो पाथ जो अभी तक चला वो WWE के बाहर था काफ़ी सारा, लेकिन वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उस चीज़ के अंदर, और ये उनकी स्टोरी में यूज़ भी करा गया था। लेकिन रोमन रेंस ने 10 साल से, जैसे हम कहते हैं ना, क्या से क्या हो गए, पॉसिबिलिटी क्या है कि कौन सा सुपरस्टार किस लेवल से कहाँ तक पहुँच सकता है। और मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि रोहित, बहुत बार ऐसा भी हमने सुना है रोमन रेंस कभी भी बेबी फेस बनना ही नहीं चाहते थे, रोमन रेंस वो बंदा बनना नहीं चाहते थे जो शील्ड से अकेला बाहर निकले, वो मे बी वो बंदा बनना चाहते थे जो हील टर्न करता, सेथ रॉलिंस को मारता वो चेयर शॉट उतने साल पहले। तो कई बार मैनेजमेंट के आइडियाज़ जो पिच किए जाते हैं वही करने पड़ते हैं और ख़ुद को कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन अब हम मे बी एक डिफरेंट एरा में रहते हैं जहाँ पे कोडी को उतना टाइम नहीं लगेगा उस चीज़ तक पहुँचने के लिए जितना मे बी रोमन को लगा था, बिकॉज फ्रीडम है कि वो कर सकते हैं जो उनको करना है। तो मैं इस चीज़ पर फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आखिरी जो अभी है कि 5 साल बाद आज से, क्या ऐसा लगता है कि कोडी उस तरीके का बंदा है जो अपने आप को रेलिवेंट रख पाएगा, कि उसमें वो ड्राइव है अगर देखा जाए कि भाई मैं हमेशा टॉप पे ही रहना चाहता हूँ?
यहाँ पे मैं इसको दो नज़रिए से देखता हूँ। कोडी रोड्स में मुझे 100% 110% भरोसा है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बहुत बढ़िया होगा, लेकिन मेरे को साथ में एक डाउट भी आता है कि क्या जो ट्रिपल एच की नज़र में, मैनेजमेंट की नज़र में या कोडी रोड्स की नज़र में अच्छा है, क्या वो फैंस की नज़र में भी उतना ही अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में, स्पेशली अगर ये कंपैरिजंस वाली चीज़ ख़त्म होती है तो, क्योंकि ये ही अगर 3-4 महीने बाद ये सारा सेटल हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 5 साल बाद WWE डेफिनेटली इन्वेस्टेड है कोडी रोड्स में। और कोडी रोड्स को अगर मैं देखूं तो कोडी रोड्स वो दम रखते हैं कि वो आने वाले टाइम में कंपनी को लेके जाएं, तो मैं अगर सेफ इस पे बोलना चाहूं तो यस, आई बिलीव कोडी रोड्स आने वाले 5 साल में एक बहुत डिफरेंट कोडी रोड्स होगा, और उस टाइम पे फिर ये बातें ही बोली जाएंगी कि कोडी रोड्स ने रोमन को हराया था, तो भाई कोडी रोड्स कैसा लग रहा था, वो बिल्कुल बेकार था, वो इस शो में आ रहा था, तब उस टाइम पे बातें मैटर नहीं करेंगी। अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत कुछ सोच समझ के देख के सब चीज़ें की गई हैं, वरना इतनी बड़ी विक्ट्री किसी को देना कोई छोटी बात नहीं है। तो आई कैन से कि यस, मेरे को भरोसा है कोडी रोड्स के ऊपर।
तो भाई उम्मीद करेंगे, मैं तो यही बोलूँगा कि WWE को हमेशा एक पॉइंट पे अपना कोई वो नया सुपरस्टार चाहिए होता है जो आगे कंपनी को 5 साल तक खींच सके, फिर उसका टाइम आता तो एक और चाहिए होता है, और एक नेवर एंडिंग साइकिल है। जितने साल इस कंपनी को हो चुके हैं, प्रॉब्ली हर 5 साल में या फिर मे भी हर 10 साल में वो ये चीज़ करने में सक्सेसफुल रहे हैं। कोई भी एक ऐसा टाइम नहीं हुआ जब वो एक फ्लैग बैरर नहीं था, और अब वो जब हुआ रोमन रेंस के फॉर्म में इतने बढ़िया लेवल पे, तो उसको आगे कैरी ऑन करना एक सबसे टफ टास्क है, और ये बार बार मैं बात बोलूँगा। तो रोहित, आई थिंक लोग काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोडी से भी और हमसे भी, बिकॉज आने वाला टाइम इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और असली अखाड़ा।
अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आने वाले शायद एक महीने के अंदर आपको चीज़ें पता चलेंगे, कुछ भी बोलने नहीं चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब बोलने का टाइम ख़त्म, काम करने का जो टाइम है और ज़्यादा काम करने का टाइम वो शुरू। अगर आपने भाई इस एपिसोड को एंजॉय किया, भाई बहुत डेप्थ में जाके हमने बातें की हैं, तो इसको आप जो है पसंद करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।